नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी ये विशेष प्रस्तुति है जिसका नाम है बी द चेंज सीरीज। पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से दोस्तों हम हर दिन आपके साथ बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही हैं। ये एक लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम में हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं। आप हमारे साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप अपने सवाल पूछते हैं, अपने विचार रखते हैं और ब्रह्मा कुमारी इसके वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने आपको गाइडेंस और स्पिरिचुअल विजडम ऑफर करते हैं। बेशक एक बदलाव का दौर है जिसमें हम सभी जी रहे हैं और थोड़े बहुत हम सबको भी अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत पड़ी है और कुछ लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ी है, तो उस बदलाव में हम आपकी मददगार बनने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल विजडम, इमोशनल सपोर्ट, अगर ऐसा कुछ हम ऑफर कर पाए तो यही हमारी कोशिश रही है। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और आज के हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम के रूप में ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। दीदी जी ब्रह्मा कुमारी के साथ अनेकों दशकों से जुड़े हैं और ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को अग्रसर करने में इनका योगदान सराहनीय है। दीदी जी फिल वक्त ब्रह्मा कुमारी के दिल्ली पांडव भवन में अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाती हैं और इनके मार्गदर्शन में हजारों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज यह हमारा सौभाग्य है कि दीदी हमारे साथ जुड़े हैं। दीदी जी आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। दीदी जैसे ये जो बदलाव का वक्त हम देखते हैं, जो चेंजिंग टाइम्स हम सब लोग देख रहे हैं, इसमें अलग अलग परिस्थितियां आई हैं और अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से गुजर रहे हैं। हमारे उन दोस्तों के लिए प्रोग्राम देख रहे हैं, उन दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में YouTube या Facebook पर जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें शाउट आउट दे सकते हैं, आपके कोई ख्याल है, विचार है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये लिख कर बताएं ताकि हम मार्गदर्शन ले सकें। हमारे स्पिरिचुअल विजडम जो आज हमें प्रोवाइड करने के लिए पुष्पा दीदी जी हैं उनसे, और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ हमें बताना चाहते हैं कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है तो भी आप हमें बता सकते हैं। आज के सवालों से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला सवाल मैं दीदी जी के सामने पूछना चाहता हूं। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं दीदी और वो पूछते हैं कि व्हेन समवन मेक्स अ मिस्टेक हाउ टू एम्पावर देम एंड नॉट जस्ट एडवाइज। वो बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है उस समय पर हम उनको सशक्त कैसे बनाएं, सिर्फ एडवाइस देने का ही काम कर जाते हैं अक्सर हम, तो एडवाइस देने की बजाय उनको हम शक्तिशाली या सशक्त कैसे बना सकते हैं, वो पूछते हैं चंद्रशेखर जी।
बहुत अच्छी बात चंद्रशेखर भाई जी ने पूछी है, क्योंकि एडवाइस देना तो बहुत आसान होता है और आजकल हम देखते भी हैं कि हर एक दो को बड़े आराम से एडवाइस दे देता है, यहाँ तक कि छोटे भी बड़ों को एडवाइस दे देते हैं, मम्मा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी बात हम तब ठीक कर पाते हैं या गलती को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम कराना तो यही चाहते हैं जब एडवाइस देते हैं कि ये समझ जाए, ये बदल जाए, अंदर ऐसी भावना होती है, पर दूसरा व्यक्ति कई बार ना समझ पाता है ना बदल पाता है। बदल पाने में तो बहुत अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी पूछी है और सचमुच मेडिटेशन से और हम जो ये स्पिरिचुअल लाइफ डील करते हैं और सबको बताते हैं, अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं, तो उन्हें सशक्त बनाना बड़ा जरूरी होता है। और उसके लिए ही ये आवश्यक है सबसे पहले कि हमारे अपने अंदर उनके प्रति वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कई बार हम सोचते हैं कि बस ये ठीक हो जाए, पर एक साइड ठीक होने से और दूसरी साइड उसके लिए कुछ भी ऐसी भावनाएं ना रखता हो या उस पर थोपना चाहता हो तो वो मुश्किल हो जाता है। और अक्सर ये भी होता है कि गलतियां तो किससे नहीं हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। आज अगर उससे हुई है कल मुझसे भी हो सकती है। तो जितनी हमारी अपनी अंदर की ऐसी सोच होती है, जो सिर्फ उस समय नहीं कि हम ये सोचें हम इसको कह रहे हैं, हम इसके अच्छे के लिए कह रहे हैं, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हमारे अंदर पहले से ही हर एक के प्रति, जिनके साथ हम रहते हैं, व्यवहार में आते हैं, और वो हमारी गुड फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, उसके प्रति हमारा ये भाव होता है कि ये अच्छा ही है और आगे ही अच्छा करेंगे, वो पहले से फीलिंग्स होती हैं, उस समय जताने की बात नहीं होती है, तो हम उन्हें इंटरनली वो फीलिंग्स उनको फील होती है हमारी, क्योंकि ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस होते हैं, तो इससे भी वो एम्पावर होते हैं। दूसरी बात, जिस समय हम उन्हें कोई बात समझाते हैं तो उस समय उनके उनको कहने का जो हमारा तरीका है वो भी बहुत पोलाइट होना चाहिए। हम सिर्फ तुमने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस प्रकार के कई शब्द यूज करते हैं जो मैं अभी कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि ना ही ऐसा अभी कहने या बताने का टाइम है, परंतु जब भी कोई कहता है तो वो अपने को खुद भी चेक कर सकता है कि मैंने किस ढंग से उसको कहा। तो वो जो हमारा कहने का तरीका होता है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि किस विधि से हमने उसको, किन शब्दों से हमने उसको वो बात कही है कि आपकी ये गलती है, तो उसे गलती ना ज्यादा शो करके या ज्यादा महसूस करा के, बल्कि उसे क्या करने से क्या फायदा हो सकता है, हम उसको उस पॉजिटिव वे में ले जाएं, तो मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा और बड़ा आसान हो जाता है, और दूसरे के मन में एक फेथ हो कि हम उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं। वो फेथ बिठाना भी हमारे प्रैक्टिकल एक्टिविटी से ही होता है, व्यवहार से ही होता है। अब अगर मेरा ही व्यवहार इतना पोलाइट या उसके प्रति बहुत नम्र नहीं है, या जो मैं पहले कह चुकी हूँ वो फीलिंग्स नहीं है, तो मैं कहूंगी भी तो उसको लगेगा कि ये तो ऐसे ही कहते ही रहते हैं। एक बार एक बच्चे ने हमसे कहा कि हमारी मम्मा तो रोज ही ऐसे कहते ही रहती है, तो हमने उसको फिर बताया कि वो रोज क्यों कहती रहती है, क्योंकि आपने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, गौर ही नहीं किया, तो इसलिए उनको रोज कहना पड़ता है। अगर आप उनकी बात को ध्यान से सुन लेते और ये सोच लेते कि मामा मेरे फायदे के लिए कह रही हैं, तो शायद फिर वो रोज नहीं कहती और आप अपने आप को वैसा करने में समर्थ महसूस करते। तो उस बच्चे ने कहा, हाँ ऐसे ही मैं तो सुनता रहता था, मामा का काम कहना है और मेरा काम सुनना है। तो हमको रोज रोज भी टोकने की जरूरत नहीं है किसी को, पर उसको प्यार से ये महसूस हो, उसको हम फेथ बिठाएं अपने में कि हम उसके लिए अच्छा कहते हैं और उसके हम शुभ चिंतक हैं और हम ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें या आपको सफलता मिले या जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं वो क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएं। ऐसी जब हमारी अपनी फीलिंग्स होती हैं और उसका हम विश्वास बिठाते हैं और उनको ये लगता है कि ये हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, तो जरूर मैं समझती हूँ कि उसको अंदर एम्पावर फील होती है। और दूसरी बात, हमको तो मेडिटेशन से ये भी स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम अपने वाइब्रेशंस भी उसको पहुंचा सकते हैं और वो भी उसके ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि बहुत बार हमारे इंटेंशंस अच्छे होते हैं बट उसे करने का तरीका भी वैसा होना चाहिए, वाइब्रेशंस का भी प्रभाव होता है, आपने बताया। अगला प्रश्न हमारे साथ हमारे फ्रेंड हैं, कुशाली नाम है इनका, कुशाली यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं, व्हाट इज द माइंड, इज इट अ पार्ट ऑफ द सोल और इज इट जस्ट अस, इज लाइक अ बॉडी डिफरेंट फ्रॉम अस, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट द माइंड इज एंड इट्स फंक्शन। मैं समझता हूँ दीदी, बहुत सारे दोस्त हमारे इस लॉकडाउन के दौरान नए सिरे से मेडिटेशन सीख रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे मेडिटेशन सीखा है, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दोस्त पूछते हैं। वो पूछते हैं कि मन क्या है, क्या मन हमारे ही एक ऑर्गन है या फिर वो कुछ अलग चीज है, कैसे काम करता है, ऐसे कुशाली पूछते हैं।
कुशाली जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी हमें ये मालूम होना ही चाहिए कि मन क्या है। आज एकाग्रता की जो प्रॉब्लम है, मनुष्य कंसंट्रेट कहीं नहीं कर पाता पढ़ाई में या अपने कार्य में और मेडिटेशन में, तो उसका कारण यही है कि वो इस बात से इग्नोरेंट है, मन के बारे में जानते ही नहीं। वैसे भी आप देखिए कि हम दिन में कई बार ये शब्द यूज करते हैं, आज मेरा मन बड़ा खुश है, आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, मन कर रहा है मैं ऐसा कर लूं, तो इसका मतलब है मन आपका ही है। अब मन जब आपका ही है तो जैसे आपको और बातें मालूम है, हाँ, हाथ मेरे है, आंख मेरी है और ये ऑर्गन्स मेरे हैं, तो मैं चाहूँ तो उनको वैसे ही यूज कर सकती हूँ। अब मैं चाहूँ तो अपने हाथ को ऊपर करूँ या नीचे करूँ क्योंकि मेरा हाथ है, ऐसे ही आंखें मैं बंद करूँ या खोलूँ वो मेरी आंखें हैं। हम छोटे से बच्चे को भी सिखा देते हैं कि आपकी आंखें कहाँ हैं, आपका नाक कहाँ है, उसको पूछते हैं हम वेयर इज योर आईज, तो वो बड़े हाँ वो हाथ लगा देता है छोटा सा किड भी कि मेरी आंखें यहाँ है, वेयर इज योर नोज। अब यही क्वेश्चन वेयर इज योर माइंड मैं आपसे पूछती हूँ, आपका मन कहाँ है, तो आप सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि ये मालूम नहीं है कि मन कहाँ है, लेकिन मन है तो आपका ना, आपने कहा तो ये कि मेरा ही है, तो मेरा मन वो फिर क्या है। एक्चुअली मन मीन्स है थिंकिंग करना, कि मैं सोचती हूँ, और ये बात भी हम कई बार कहते हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ, तो ये जो सोचना है इसको ही वास्तव में मन कहते हैं। दूसरी बात कि ये मन जो है वो बॉडी का पार्ट नहीं है, और इस कारण से मनुष्य ये समझ नहीं पाता है कि मन मेरा कहाँ पर है। जैसे मैंने अभी आपसे ही कहा वेयर इज योर माइंड, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, या कोई कह देगा मन यहाँ है, कोई कह देगा यहाँ है, कोई कह देगा यहाँ है, परंतु मन जैसे हमने कहा थिंकिंग पावर है, वो बॉडी का पार्ट नहीं है। अगर बॉडी का पार्ट होता तो आज मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव कर गई है, वो बॉडी के हर पार्ट की सर्जरी कर सकती, कुछ भी कर सकती है, तो मन की तो आज तक किसी ने नहीं की। फिर तो बड़ा आसान हो जाता कि हमारा मन अच्छा नहीं है, अशांत है, उसमें एकाग्रता नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं है, और वो तो बहुत नेगेटिव भी है, तो फिर किसी योगी का शरीर छूटता तो या उसका कोई ऐसी बात होती तो हम उसका मन ले लेते, अपने में डलवा लेते, चेंज करा लेते, जैसे बॉडी के पार्ट्स हो रहे हैं आजकल के, परंतु आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, हाँ ना हो सकता है, ना आप किसी डॉक्टर को हाँ कह सकते हैं, या आप किसी भी मेडिकल साइंस की उस रिसर्च में जाकर के भी पूछ लीजिए, मन की आजकल कोई ने सर्जरी नहीं की है। मन के लिए यही सजेशन दी जाती है कि आप जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन सीखिए, या साइकेट्रिस्ट को जाकर के अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं आदि आदि। तो मन क्योंकि शरीर का अंग नहीं है, शरीर के हर अंग का आज के समय में आप देख ही रहे हैं, मुझे उसका वर्णन करने की भी जरूरत नहीं है, परंतु मन का जो वास्तव में हमारी आत्मा है, चैतन्य सत्ता जो इस शरीर को चलाती है, जो एक एनर्जी है जिसको साइंस ने कहा है, जो बहुत सूक्ष्म है, इसी कारण से उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, इसका भी एक्सपेरिमेंट साइंस कर चुकी है कि वो एक एनर्जी है जो बॉडी से चली जाती है और इस कारण से ये शरीर डेड हो जाता है। तो मन मीन्स जो मेरी थिंकिंग पावर है वो शरीर का अंग ना होकर के एक सूक्ष्म एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सोल कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में उसको एनर्जी कहते हैं, तो जो वो एनर्जी में जब सोचती हूँ उसे ही मन कहते हैं, उसे ही हम अपनी विचार शक्ति कहते हैं, अपने संकल्प कहते हैं, अपने थॉट्स कहते हैं, और ये आप अपनी इंटरनल फीलिंग से खुद भी महसूस कर सकते हैं कि जिस समय आप सोच रहे हैं उस समय आपकी फीलिंग्स क्या है। तो वो फीलिंग्स जो हैं, वो हमारे इमोशंस जो हैं, वो हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है, और इस कारण से डेड बॉडी में आप देख लीजिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं होते हैं। कोई रो रहा है उसके पास, उसको मालूम नहीं है कि ये रो रहा है या हंस रहा है, लेकिन हमारे सामने कोई अच्छा सा चेहरा भी नहीं अगर ठीक बना के आता तो हमारा मन उससे थोड़ा वो हो जाता है कि मुझे तो मन नहीं कर रहा कि मैं इसका चेहरा भी देखूं। तो वो जो फीलिंग्स आई तो वो मेरी आत्मा ने, उस सूक्ष्म चैतन्य सत्ता ने जो लिविंग फोर्स है, लिविंग बीइंग है, उससे आई और वही थिंकिंग करती है, और उसकी थिंकिंग ही मन कहलाती है, और आत्मा का निवास यहाँ पर है, और वो थिंकिंग करती है तो हम महसूस करते हैं, और उसी का इफेक्ट हमारे अन्य ऑर्गन्स पर, ब्रेन पर और सभी पर पड़ता है जब हम उनको एक्ट में लेकर आते हैं उन थॉट्स को। तो ये है मन, इसीलिए हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना होता है, मीन्स अपने मन जो हम सोच रही है आत्मा उस पर ध्यान देना होता है और वही हमारी फीलिंग्स बन जाती है। तो मेडिटेशन में भी हम या कंसंट्रेशन कोई भी कार्य में जब आप करते हैं तो उस समय आपके थॉट्स ही उस पर टिकना आवश्यक होते हैं, जिसको आप कहते हैं मेरा मन लग रहा है या मेरा मन नहीं लग रहा है। तो जब हमने ये समझ लिया कि मेरे ही थॉट्स हैं, मैं ही सोचने वाली हूँ, मैं ही वो लिविंग बीइंग हूँ और मेरा ही ये मन है, तो जैसे मेरे अन्य ऑर्गन्स हैं उनको मैं अपनी मर्जी से चलाती हूँ कि मैं चाहूँ तो आंखें बंद करूँ, चाहे तो खोलूँ, चाहे तो मैं बोलना चाहूँ, चाहे तो मैं ना बोलूँ, ऐसे ही मेरा मन भी एक ऑर्गन है जिसको मैं ऑर्गन मीन्स मेरी आत्मा की वो शक्ति है लिविंग बींग की, जिससे मैं सोच करके अपने आप को मीन्स मन को अपने शक्ति से अपने, क्योंकि मेरा ही ऑर्गन है ये। स्पिरिचुअल रीति से तो बहुत आसान हो जाता है, पर ऐसा सोचने से भी हम सहज ही अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं समझता हूँ खुशाली जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई पूछ ले हमें कि तुम्हारा मन कहाँ है तो हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। और ये सही अंडरस्टैंडिंग ही आपने बताई। और मन अगर हमारे कंट्रोल में है, हम जैसे अपने दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे मन के साथ भी किया जा सकता है। आपने बहुत ही सुंदर बात बताई, खुशाली जी भी थैंक यू कह रहे हैं। दीदी अगले प्रश्न पर मैं ले आता हूँ। प्रश्न फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जूही रॉय, वो पूछते हैं कि हाउ टू फॉरगेट पास्ट एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, हाउ टू फॉरगेट समवन हुम वी लव्ड मोस्टली। जूही जी का प्रश्न है कि हम जो चीजें बीत गई हैं उस चीज को कैसे भूल सकते हैं, पास्ट को कैसे भूल सकते हैं, और डिप्रेशन से हम कैसे निजात पाएं, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, ऐसे व्यक्ति को हम जो चले गए हैं अब वो हमारे साथ नहीं है, तो उन्हें हम कैसे भूल पाएंगे, उनको हम कैसे उनके अतीत की यादों से बाहर कैसे आए, ऐसा जूही जी पूछती हैं।
हाँ जी, तो जूही जी ने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि डिप्रेशन भी कॉमन है और पास्ट की बातों को भूलने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए ही होती है, वो रह जाती है मन में और बार बार याद आती है तो मन परेशान होता है। पर हमने सचमुच अपने जीवन को सदा खुशहाल रखना है और चिंता मुक्त रखना है तो पास्ट की बातों को भूलना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ये देखिए कि क्या हमने जब भी कभी कोई पास्ट की बात याद हुई उससे मुझे कुछ मिला, आप अपने आप से पूछिए, और अगर मिला भी तो क्या मिला। तो इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए, वैसे भी ये मनुष्य का स्वभाव होता है, एक नेचुरल अंदर से रहता है कि जहां से उसे कुछ नहीं मिलता वो उसे अवॉइड करता है और धीरे धीरे अवॉइड करते करते उसे भूल जाता है। तो पास्ट की बातें याद करने से जब मुझे परेशानी ही हो रही है, मुझे दुख की फीलिंग ही आ रही है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है और मैं उसे भूलना भी चाहती हूँ, तो मुझे सबसे पहले उसे अवॉइड ही करना होगा और मन में ये अपने आप को ही स्मृति देनी होगी, मीन्स पक्का कराना होगा कि जहां से मुझे जिस बात को सोचते से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है तो फिर मैं क्यों सोच रही हूँ। तो ये मुझे खुद को ही कहना होगा। और दूसरी बात कि हम जैसे कुछ आगे करना चाहते हैं और जब हमारा अंदर से लक्ष्य होता है कि मैं ये आगे काम करूं, तो कई बार हमें कोई टोकता भी है कि देखो पीछे तो ऐसा हुआ, तो हम कहते हैं ना छोड़ो छोड़ो उस बात को छोड़ो, क्योंकि मेरे अंदर एक थ्रिल है, एक लक्ष्य है कि मुझे आगे ये काम जरूर करना है, तो मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है, प्रेजेंट दिख रहा है, तो मेरा जो कंसंट्रेशन है, मेरी जो लक्ष्य है, तो मैं उस प्रेजेंट पर जरूर अपना लक्ष्य रख करके अपने थॉट को पक्का करूं, अपने फ्यूचर को सामने रखूं, तो पास्ट भूल जाता है। वैसे भी कहते हैं वो भूतकाल है हिंदी में ना, तो भूत माना तो हम चाहते भी नहीं है भूत सामने भी आए, और वैसे भी भूत चिपक जाता है ना, तो पास्ट भी एक ऐसा ही होता है कि वो कोशिश करता है कि वो ना जाए, लेकिन क्योंकि हमको चाहिए नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, और हम खुद भी जिन बातों को ना पसंद करते हैं, कहते छोड़ो ना, कोई भी हमारे सामने उस बात को कहेगा, हम कहेंगे छोड़ो ना, मेरा इससे कोई वास्ता ही नहीं है, छोड़ो ना, आप मुझे क्यों याद करा रहे हैं। तो ऐसे ही हमको उन बातों को छोड़ देना मीन्स प्रेजेंट को हम समझते हैं, और जो चीज हम चाहते हैं उसको हम ध्यान पर रखें, तो मैं समझती हूँ कि पास सहज भूल जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, उसको हम फुल स्टॉप लगा दें। अगला सेंटेंस भी जब आप लिखते हैं, कुछ भी आप टाइप करते हैं, हाँ, तो आप फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस लिख पाते हैं, नहीं तो लिख ही नहीं पाएंगे आप। ऐसे ही हमें उस बात को फुल स्टॉप लगा देना है और आगे की बात को अपने ध्यान पर रखना बहुत जरूरी होता है, और वो फिर अच्छी हो जाती है बहुत ज्यादा, नहीं तो मिक्स हो जाता है सब कुछ।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी कि पास्ट को हमें कैसे भुलाना इतना मुश्किल नहीं है और वो आसानी से कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ जूही जी इस बात से सहमत होंगे और वो इन चीजों को यूज भी करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूं दीदी, बट हमारे दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो आप दीदी जी से पूछना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, या आप बस ये बताना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके कमेंट्स को, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न लिखें, अपने शार्ट आउट्स दें। अगर आपको लगता है कि आपके प्रश्न कुछ प्राइवेट नेचर के हैं, जहां पर आप सवाल में आप अपना नाम प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं जहां पर हम आपके नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट उन प्रश्नों को हम दीदी जी से उसका आंसर्स लेने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे प्रश्नों को socialmedia@brahmakumaris.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अगर इन प्रश्नों का हम जवाब नहीं दे पाए तो ईमेल के थ्रू भी इन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, जब प्रश्न बहुत ज्यादा प्राइवेट नेचर के हों। अगले प्रश्न की तरफ मैं अभी आप सभी दोस्तों को ले चलना चाहता हूं। अगला प्रश्न है, कुछ और दोस्तों ने फीडबैक भी दिया है, बट मैं अगले प्रश्न पर ले चल रहा हूं। विघ्नेश नारायण जी हमारे साथ हैं और विघ्नेश पूछते हैं, हाउ टू चेंज द नेगेटिव एटमोस्फियर। ये कहते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो वातावरण बना हुआ है, जो लोग हमारे आसपास जुड़े हैं, वो एक नेगेटिव एटमोस्फियर बना देते हैं, तो उस नेगेटिव एटमोस्फियर को कैसे बदलें, ऐसा विघ्नेश जी पूछते हैं।
बहुत अच्छी बात है विघ्नेश भाई जी, क्योंकि आजकल तो नेगेटिव एटमोस्फियर बड़ी जल्दी बन भी जाता है, और ऐसा हर एक को हाँ कहीं ना कहीं मिलता भी है, चाहे अपने ऑफिस में चाहे घर में। पर क्योंकि अगर हम अपना पॉजिटिव पक्का रखते हैं, ऐसे नहीं हम बहुत इजीली उससे कि ठीक है ये तो सोचते ही नेगेटिव है, करते ही नेगेटिव है, तो मैं भी नेगेटिव यू मीन्स, तो वो और ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाता है, जो हमारे को भी इफेक्टेड करता है औरों को भी करता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो हमें यही रखना है कि जब मैं समझती हूँ कि ये नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, तो मेरा थॉट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि गुलाब का फूल है, वो उस को हम डालते कितनी गंदी खाद है, पर वो क्या करता है, खुशबू देता है, और गुलाब के फूल को कहना नहीं पड़ता है, हम वहां से क्रॉस भी कर जाते हैं तो हमें खुशबू आ जाती है, और उसकी जितनी खुशबू की स्ट्रेंथ होती है तो हम दूर खड़े भी उसकी उसको महसूस कर लेते हैं कि खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही मेरी पॉजिटिविटी कितनी है वो मुझे ध्यान पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो दूसरी नेगेटिविटी मेरे को इफेक्टेड करेगी। तो मेन चीज पहले ये ध्यान रखनी है कि मेरे को उस नेगेटिव वातावरण का इफेक्ट नहीं आए, तो मेरी इतनी पॉजिटिव अंदर थॉट्स पावरफुल हो, जैसे एक अगरबत्ती की स्टिक भी हाँ छोटी सी अगर हम किसी स्मेल की जगह पे जला देते हैं तो उसका असर भी इतना हो जाता है, खुशबू फैल जाती है, तो धीरे धीरे वो खुशबू अपना इफेक्ट दिखाने लग जाती है। तो मुझे अपने थॉट को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जब मेरे ऊपर नेगेटिव वातावरण का असर नहीं आता तो अवश्य ही आपकी पॉजिटिविटी दूसरों को महसूस होने लगती है कि हमने तो ऐसा किया, ऐसा बोला, लेकिन इस भाई ने तो ऐसा कभी नहीं बोला, ऐसा कभी नहीं सोचा, इनके मन में तो कभी ऐसा नहीं फीलिंग्स हमें दिखाई दी कि ये कभी उदास हुआ हो या निराश हुआ हो या कभी ऐसा बोला हो हमको, हम ऐसा भी करते रहे, पर उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट स्टेप कि मेरे ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, मुझे अपने थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, और हमको तो इतना ज्यादा ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए कि उस नेगेटिव में से भी हम पॉजिटिव ले ले। जैसे हमने गुलाब के फूल का आपको एग्जांपल दिया कि हमें ये लगे कि ये नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी आदत के अनुसार कर रहे हैं, उनको तो ये बात मालूम ही नहीं है कि वो नेगेटिव कर रहे हैं। तो जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे वो नेगेटिव फील ही नहीं होता, भले चाहे वो नेगेटिव है। जैसे आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आप शॉप पर गए, आपको सेल्समैन ने 10 चीजें दिखाई पर आपको पसंद उसमें से एक है, 9 चीजें पसंद नहीं है, तो आपको कोई बुरा नहीं लग रहा और आपको अच्छा लग रहा है कि उसका काम तो दिखाना है, वो तो आपको घटिया चीज भी दिखाएगा बढ़िया चीज भी दिखाएगा, मेरी अपनी समर्थ कौन सी चीज को लेने की है, ये तो मेरे ऊपर है। तो उस समय हम बड़े प्यार से बड़ी खुशी से अपनी सिलेक्शन को ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, और उसको हम खराब भी नहीं कहते हैं, अच्छा भी नहीं कहते हैं, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया उस चीज से मेरा, क्योंकि सरोकार ही नहीं है। और ही बल्कि कई बार तो खुश भी हो जाते, चलो इसने दिखाई तो सही अच्छी 10 चीजें, मैंने अपनी एक ले ली। ऐसे ही कोई नेगेटिव कितना भी करे, कितना भी वातावरण कैसा हो, आप उसमें से भी अच्छी बात ले लो, और जो नहीं अच्छी लगती उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दो। जब आप ध्यान ही नहीं देंगे तो दूसरे को भी ये लगेगा कि इसने तो बुरा माना ही नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे अपने आप समझ जाते हैं कि इस चीज की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो हमको इजिली लेने से और अपना पॉजिटिव थॉट रखने से जरा भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा।
जी, बहुत ही अच्छी बात कही दीदी आपने। ये जो बात आप अभी बता रहे थे कि बहुत बार हम दूसरों के नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे ऊपर असर करते हैं ऐसा सोचते हैं, बट अगर हम अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, अगर अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते हैं, तो फिर उनका असर भी हम पर नहीं होता और हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त आप जो बातें कह रहे हैं दीदी, उसके लिए अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी लिख रहे हैं, उन कमेंट्स को हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता नहीं हूं, मैं कोशिशें करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लिया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने बात पूछने की कोशिश की है, तो कभी कभार जब लोग प्रश्न पूछते हैं तो मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर मिलते जुलते सवाल हैं तो 2-3 सवालों को मैं एक साथ ही क्लब कर देता हूं। दीदी, प्रश्न मैं अपनी तरफ से ये पूछना चाहता था, जिसमें हमारे एक दोस्त ने भी ये बात पूछी है। मोनिका शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पर और वो ये प्रश्न पूछते हैं। मेरे घर पर हमेशा नेगेटिव माहौल रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता, बीमारी रहती है, ऐसा मोनिका शाह जी पूछते हैं। एक तो दीदी आप ये आप कह रहे थे कि नेगेटिव एटमॉस्फेयर के बारे में आपने इसका उत्तर अभी अभी दिया ही है
जी।
मणि सेठी जी प्रश्न पूछते हैं, आई एम अनेबल टू फॉरगिव समवन हर्टिंग डीपली, पुराना भूल जाऊं तो नया फिर कुछ वो कर देते हैं, फिर पास्ट फिर याद आ जाता है, ऐसा वो कहते हैं। मणि जी का प्रश्न ये है कि बहुत बार हम कोशिश करते हैं जब लोग गलतियां कर देते हैं, बट हर दिन वो पुरानी पास्ट की चीजें हमें याद आती हैं, और इनके केस में तो ऐसा है कि पुराना भूल तो जाते हैं बट फिर से वो व्यक्ति सामने वाला कुछ ऐसा हर्ट कर देता है जिसकी वजह से फिर पास्ट की बातें याद आती हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसा मणि जी पूछते हैं।
जी मणि भाई जी, देखिए जो गलती कर रहा है उसमें एक विशेषता है, वो कितना पक्का है, कितना दृढ़ है, या उस नेचर का वो कितना हैबिचुअल हो चुका है। तो हमको उससे भी एक गुण ले लेना चाहिए कि देखो चाहे वो कितना भी अच्छी बात नहीं है, परंतु वो उस चीज में कितना नेचुरल है, कितना पक्का है, तो मेरी तो क्वालिटी है, वो तो डिसक्वालिटी में भी ऐसे चल रहा है, तो मैं क्वालिटी होते हुए भी पास्ट को मैं भुला भी देता हूँ और मेरे अंदर पॉजिटिविटी भी है और मैं समझ भी पा रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए जो वो कर रहा है, तो मैं अपनी इस क्वालिटी को क्यों छोड़ूं। तो उससे भी आप ये गुण सीखो, उससे भी आप अपने मन के अंदर उन कमजोरी के संकल्पों को नहीं लाने दो, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है वो आपको भी फायदा करेगी और उसको भी फायदा करेगी। उसकी जो वो नेगेटिविटी से भी आपने ये देख लिया कि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, जैसे चोर का काम चोरी करना है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो पुलिस अपना स्वभाव छोड़ती है क्या? उसका काम उसको पकड़ना है, वो किसी भी तरीके से उसको पकड़ती है और पकड़कर चाहे उसको कोई भी यहाँ ट्रीट करती है किसी भी ढंग से करती है। तो मैं अपने आप को, ये तो मैंने आपको वर्डली वो सुनाया क्योंकि आज की सिचुएशंस में ऐसा चलता है, लेकिन कहने का भावार्थ मेरा ये है कि हमको अपनी थॉट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी लेनी होगी। और दूसरी बात, आप ये समझ के चलिए कि हर आत्मा की नेचर अलग है, एक जैसी नहीं हो सकती। हाँ, धूप धूप होती है, बारिश बारिश होती है। हाँ, प्रकृति की भी नेचर देखो, अपने अपने समय पर अपने अपने ढंग से चलती है। उस समय हम ये नहीं कह सकते हैं गर्मी क्यों आई, सर्दी क्यों आई, बारिश क्यों आई। ऐसे ही मनुष्यों की भी, मनुष्य आत्मा की भी, हर चीज की अपनी अपनी क्वालिटी और नेचर होती है। तो उस आत्मा के अंदर जो रोल है, जो उसकी नेचर बनी हुई है, जो उसके कर्मों का संस्कार बना हुआ है, वो अपना है। हाँ, रावण जैसे, देखो आपने रामलीला देखी हो, रामायण देखी हो, रावण आता है तो अपने ढंग से आता है, हाँ, दहाड़ता हुआ। राम आता है तो अपने ढंग से आता है, मुस्कुराता हुआ। वो कोई रावण को देख के दहाड़ना नहीं शुरू कर देता, हे रावण तुम ऐसे हो। वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही मुस्कुराता हुआ आता है। तीर वो भी चलाता है, तीर वो भी चलाता है। तो हमको इस रीति से अपने स्वभाव को, अपनी क्वालिटी को, अपनी पॉजिटिविटी को कभी नहीं छोड़ना, चाहे हमारे सामने कितनी भी नेगेटिविटी हो। तो वो अपने आप ही धीरे धीरे मुझे तो स्ट्रेंथन करेगी करेगी, अल्टीमेटली उसके भाग्य में होगा तो उसको भी आपसे मिल सकता है, ऐसा मैं समझती हूँ। हाँ
जी जी जी, जो आप ये बात कह रहे थे दीदी, मैं समझता हूँ ये बहुत सारे लोगों के लिए अप्लाई करता है। कि मैं अक्सर कहीं ट्रक्स वगैरह पे लिखा हुआ देखता हूँ कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, और अगर ये चीज जो आपने अभी कही वो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिवली चीज है कि भाई जो आपका है वो तो आपको मिलेगा ही, आप क्यों उसकी चिंता करें। और जो बीत गया है उसे भुलाने की कोशिश में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बट पॉजिटिविटी को अपने साथ बनाए रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ एक और दोस्त हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा लंबा सा प्रश्न है, वो डिटेल में इस चीज का प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। मैं उस प्रश्न को लेना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लगभग हाफ एन आवर के टाइम पे आ चुके हैं। अगर आपके पास अभी भी कुछ प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम लगभग और 25 मिनट तक दीदी जी से प्रश्न पूछेंगे और फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। आप अपने प्रश्नों को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं, तो वहीं पर आप अपने कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं और वहां से हम क्वेश्चन को आगे दीदी जी के साथ लेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, लीजा सचदेव नाम है इनका। लीजा जी फेसबुक से जुड़े हैं और वो कहते हैं, दीदी, हाउ टू नॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन अदर्स प्रॉब्लम्स, आई लूज माई पीस वेन आई डू दिस, प्लीज गाइड, ऐसा कहते हैं। लीजा जी पूछते हैं कि मैं अपने आप को दूसरों की समस्याओं में इन्वॉल्व नहीं करूं, दूसरों की समस्याओं में खुद नहीं फंस जाऊं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा लीजा पूछते हैं।
लीजा जी, अच्छी बात है, दूसरों की उसमें तो फंसना ही नहीं चाहिए। हा? और अपने लिए हम चाहते हैं कि हम ठीक चलें, तो जरूरत भी नहीं है दूसरे की उसमें फंसने की। मैं समझती हूँ आपने क्या सोच कर ये पूछा होगा, आप इस बात को तो समझते भी होंगे ही, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उनके अच्छे के लिए भी सोच लेते हैं कि हम इनकी बात को सुने देखें या इनके बातों को हल करें, तो वो ठीक बात होती है। लेकिन जहां ये लगता है कि मेरे कहने या पूछने से इनको कोई फायदा नहीं होगा या ये कोई बात को मेरे समझेंगे नहीं, तो हम अपने मन में उस बात को, अपने थॉट्स को उसके प्रति वो गुड वाइब्रेशंस दें, ना कि हम ज्यादा इन्वॉल्व हों। ये मैं सोचती हूँ ऐसा। और अगर वो इच्छुक होगा कोई या समझता होगा, आप में विश्वास रखता होगा, तो स्वयं आकर पूछेगा आपसे कि ये कैसे करूं मैं, इस समस्या का हल क्या होना चाहिए, तो आपकी जो भावनाएं ऑलरेडी उसके प्रति जुड़ी हैं, या आप जो चाहते हैं कि अच्छा होना चाहिए, मैं इसकी समस्या का हल कर दूं, तो आप बहुत अच्छी तरह फिर कर सकेंगे। और उस फेथ से जब वो सुनेंगे आपकी बात को तो फिर मानेंगे भी सही, नहीं तो कई बार ऐसा होता है हम कहना भी चाहते हैं और अगला ना सुनना चाहता है और ना मानना चाहता है, तो ये फिर सब वेस्ट हो जाता है। तो अपने मन के अंदर अपनी भावनाओं को इतना पॉजिटिव रखिए, इतना शुभ रखिए, जो धीरे धीरे वो खुद भी समझे या ना भी समझे, पर आपके मन में क्योंकि शुभ भावना है तो अल्टीमेटली वो आप तो सेफ रहेंगे ही रहेंगे और वो भी अपने फेथ को बढ़ा पाएंगे आपके प्रति, ऐसा मैं समझती हूँ। मैं समझती हूँ मैं प्रश्न को समझ पाई हूँ शायद। आवाज
जी, मैं समझता हूँ दीदी लीजा जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। बट ये जो आप बात कह रहे थे दीदी अभी कि बहुत बार जब हम देखते हैं कि अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं उनको आदत सी पड़ जाती है कभी कभार कि हम समस्याओं में बेकार में अपना टांग अड़ाने लगते हैं। तो बहुत बार हम चाहते नहीं है बट ये हो जाता है, कभी कभार हम अच्छे इंटेंशन से करते हैं कि भाई हमें इनकी हेल्प कर देनी चाहिए या फिर हम कुछ करेंगे तो इनका भला हो जाए, इंटेंशन अच्छा होता है बट कभी कभार ये नेगेटिव भी आदत होती है, तो कभी कभार ऐसा करते हैं कि चक्कर में जाके फंस जाते हैं और कभी कभार नेगेटिव इंटेंशन से तो करते हैं तो खैर नुकसान तो हो ही जाता है।
वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन से हमारे अंदर ये पावर्स आ जाती है कि हम समझ सकते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जजमेंट पावर आ जाती है और डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाती है, तो उससे बहुत ईजी हो जाता है
जी। दीदी एक और दोस्त है हमारे, वरद राजन नाम है इनका, वरद राजन हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से। वो कहते हैं दीदी प्लीज लेट मी नो हाउ टू कीप आवर माइंड व्हेन वी आर अनवेल, अगर हम किसी बीमारी से परेशान हैं या बीमारी को डील कर रहे हैं ऐसे टाइम पे हमें अपने मन को कैसे रखना चाहिए, ऐसा वरद राजन जी पूछते हैं। वो कहते हैं जैसे सीवियर इश्यूज होते हैं जैसे सोरियासिस वगैरह जैसी बीमारियां होती हैं, हाउ टू कीप नेगेटिव वाइब्रेशंस अवे फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स प्लीज गाइड अस, ऐसा कहते हैं कि सिचुएशंस में नेगेटिव वाइब्रेशन से अपने आप को और दूसरों को कैसे सेफ रखा जा सकता है, ये पूछते हैं वरद राजन।
ये बहुत जरूरी है वरद भाई जी, तो पहले तो आप ये सोचिए कि ये बीमारी आपको नहीं है। जैसे देखिए आप कोई ड्रेस पहनते हैं और वो ड्रेस कहीं से फटी हुई है या कहीं से हाँ कुछ ऊपर नीचे है, तो आपको पता है कि ड्रेस है मेरी वो फट गई है, इसको सील लेंगे या इसको इस ढंग से पहन लेंगे, तो आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ऐसी बीमारी जो है वो शरीर को है और आप स्वयं शरीर नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला कहा जाता है, उसे सभी कहते हैं ये एक वस्त्र है या ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट तो कभी भी कुछ भी बिगड़ जाता है, अभी देखो बात करते करते कुछ भी डिस्कनेक्ट हो सकता है तो हम डिस्टर्ब नहीं होते, समझते कनेक्शन जोड़ लें। तो ऐसे ही जो बीमारी है, कोई सी बीमारी चाहे वो कितनी बड़ी है या छोटी है, वो है तो शरीर के ही, शरीर को ही और शरीर के ही ऑर्गन को ही है, पर मैं इस शरीर को चलाने वाली, मैं खुद शरीर नहीं हूँ, ये मेरा वस्त्र है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है और इसे मैंने धारण किया हुआ है और मैं इसे धारण करने वाली एक लिविंग बीइंग हूँ, एक स्पिरिचुअल वे से एक सोल आत्मा हूँ मैं, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और अजर अमर अविनाशी हूँ और मैं अपने आप में बहुत प्योर और पीसफुल और पावरफुल हूँ। तो मैं जब ये सोचती हूँ कि मैं खुद क्या हूँ, मैं इससे अलग हूं, तो मुझे बीमारी का इफेक्ट नहीं आएगा। आप कोई भी बात में देखिए, जब किसी चीज को ये समझ लेते हैं कि ये अलग है, तो अलग मीन्स वो अपने में है, मैं अपने में हूं। ऐसे ही इस शरीर से मैं अलग हूं वास्तव में, भले मैं इस शरीर में बैठी हूं। जैसे आप देखिए कमरा है, उस कमरे में मैं कुर्सी पर बैठी हूं, अब उस कमरे की जो एक दीवार है वो अच्छी नहीं है, उसकी पपड़ी उतर रही है बार बार, लेकिन मैं तो सेफ हूं ना, मैं तो उससे अलग हूं ना, अब मेरा काम है उस दीवार की पपड़ी को या उसके पेंट को ठीक कराना बस। तो ऐसे ही ये शरीर का ट्रीटमेंट दवाई से हो रहा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। जब आप इस थॉट को पक्का रखेंगे और मैं क्या हूं, और उस रीति से मैं अपने आप को देखती हूं कि मैं तो इससे अलग एक पॉइंट ऑफ लाइट, इमॉर्टल, एक एनर्जी हूं, शक्ति हूं, और ये शरीर मेरा वस्त्र है, बस इसका मैं ठीक कर रही हूं, ट्रीटमेंट कर रही हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अपने आप में एक प्योर सोल, पावरफुल और पीसफुल सोल हूं। तो ऐसे थॉट से जो कि रियलिटी है मेरी लाइफ की, हाँ, जीवन की यही सत्यता है कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है, शरीर एक अलग चीज है, तो आपको कभी भी उसकी चीज की, उस बीमारी का इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि और ही आपके अपने जो थॉट्स होंगे, क्योंकि मैं आत्मा हूं इस शरीर से अलग, और मैं सोच रही हूं क्योंकि मैं प्योर शुद्ध थिंकिंग कर रही हूं, तो उस बॉडी पर भी अपने आप वैसा ही इफेक्ट आएगा। ऐसे हमारे तो कई एग्जांपल्स हैं इस संस्था के अंदर, जिन्होंने अपने थॉट्स से ही, पॉजिटिविटी से ही उस बीमारी को, उस ऑर्गन को भी वाइब्रेशंस दे दे के ठीक किया हुआ है।
जी दीदी, ये इंडीड बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली तब जब आप बीमार हैं। और जो आपने ये भी कहा कि एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को हील किया है अपने मन को ठीक रखकर। हमारे एक और दोस्त हैं जितेंद्र कुमार, वो ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं और लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता हूं, बट लोग हमेशा मुझे समझते हैं कि मैं क्योंकि अच्छा और पॉजिटिवली बिहेव करता हूं तो वो मुझे बेवकूफ समझते हैं और कभी कभार मुझे बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करते हैं, ऐसा जितेंद्र जी कहते हैं, आप इन्हें गाइड करें प्लीज। जितेंद्र
जी, अच्छी बात है, आप क्यों सोचते हो कि मेरे को बनाते हैं, तो आप बनते तो नहीं है ना, आपको पता लग गया कि हाँ मेरे को बनाते हैं, तो बस मुझे बनना नहीं है बेवकूफ, तो अपनी अच्छाई को भी नहीं छोड़ना है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, और आपको खुशी होनी चाहिए कि देखो मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मुझे पता है, और ये क्या कर रहे हैं। तो अपने उस पॉजिटिव और अपने उस गुण को आप निरंतर कायम रखिए, और उनको वही वाइब्रेशंस दीजिए, आप अच्छा ही करते चले जाइए, ये तो संसार का एक दस्तूर है कि अच्छा करने वाले को सब रोकने की कोशिश करते हैं और अपना ही वो दिखाने की, क्योंकि वो सोचते हैं ये अच्छा दिखता है तो हम भी वैसे दिखने चाहिए, अब वो वैसा दिख तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी नेचर, उनकी क्वालिटी डिफरेंट है उनसे। तो आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए, दुनिया में तो कहते हैं हाँ मस्ती में मस्त रहो, आग लगे बस्ती में कुछ भी होता रहे, तो ये थॉट वैसे हमको इस ढंग से नहीं सोचना है कि आग लगे, वो बात नहीं है, मेरा कहने का ये कि अच्छाई को हमेशा अच्छाई में ही रहना चाहिए, हाँ उसे तो कभी किसी उससे इफेक्टेड होना ही नहीं चाहिए, और ये तो आपकी खूबी है, तो आपको खुश रहना चाहिए और अपनी उसी मस्ती में मस्त रहिए बस। और आप तो समझ ही रहे हैं कि वो बेवकूफ बना रहे हैं, तो जो समझ ही रहा है वो तो सेफ रह ही सकता है बड़े आराम से।
जी, जयंत सिंह जी हमारे साथ हैं दीदी, वो भी यही बात कहते हैं कि आई एग्री विद जितेंद्र कुमार जी, मुझे भी बस ऐसे ही लोग समझते हैं, ऐसा वो कहते हैं। जितेंद्र जी उस चीज को ऐड करते हैं दीदी, और वो कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो मुझे बहुत डर लगता है कि भाई लोग ऐसा समझते हैं, तो नेचुरली उनके अंदर एक फियर डेवलप हुआ है इसकी वजह से, तो बोलते हैं इस फियर को कैसे मैं डील करूं, ऐसा जितेंद्र जी कहते हैं।
ये राइट बात है कि कभी कभी हाँ हमारी अपनी थोड़ी सी अंदर की कमजोरी होती है तो भय लगना शुरू हो जाता है, और हमको तो यही ध्यान पर रखना है कि मैं अपनी क्वालिटी में हूं तो भय किस बात का। भय तभी लगता है जब हम खुद अंदर से कहीं नेगेटिव होते हैं, थोड़ा बहुत, जो मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, क्योंकि बाहर के व्यक्ति तो किसी भी प्रकार के होंगे, वो तो वैसे नहीं होंगे जैसा मैं चाहूंगी, तो मैं जैसा चाहती हूँ अपने आप को, मैं वैसा तो अपने आप को रख सकती हूँ, तो मुझे उसी अपने आप को उसी ढंग से ही चलाना है। ये तो देखो संसार है, संसार में सारे आपको एक जैसे मिले जो आपकी बात को अप्रिशिएट करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। हम देखते हैं जो भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको अप्रिशिएशन कम मिलती है और नेगेटिविटी ज्यादा मिलती है, लेकिन अगर वो अपने अच्छे काम में जुड़ा ही रहता है, अच्छे थॉट में दृढ़ रहता है, तो धीरे धीरे वो लोग उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं, उसका साथ देने लगते हैं, चाहे मुंह से ना भी बोले पर वो फिर समझने लगते हैं। तो टाइम भी लग जाता है कई बार ना, हम जल्दी हताश हो जाते हैं तो डर लगने लगता है, हम सोचते हैं मैंने अच्छा सोचा हुआ बुरा, तो तुरंत हम क्योंकि इच्छा रखते हैं कोई ना कोई मेरे को कि अंदर मैंने अच्छा किया लोग समझे मुझे, तो ये इच्छा भी हमें रखने की जरूरत नहीं है, इस कारण से हमें डर लगता है और कोई कारण नहीं होता वास्तव में। आप अपने अंदर थोड़ा सा सोचिए कि मुझे क्यों डर लग रहा है, कहीं मेरे अंदर ही तो कोई इच्छा ऐसी नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को सुने माने और मैं अच्छा हूँ तो लोग समझे कि अच्छा है, तो ये हमें थॉट नहीं रखना है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि अंदर कभी कभार हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत होती है, देखने की और जांचने की जरूरत होती है कि ऐसा हम क्यों महसूस करते हैं, ऐसा क्या एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अगले प्रश्न की तरफ मैं ले चलना चाहता हूं। इस बीच बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सुंदर फीडबैक्स भी लिखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों फीडबैक्स के लिए। रश्मि शाह हमारे साथ जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, इफ यू हैव अ नेगेटिव इम्प्रेशन फॉर समवन, when we face that person we only see negativity in that person, what should we do? Rashmi Shah ji kehte hain ki agar hame kisi vyakti ke bare mein ek negative impression ban gaya hai to jab wo vyakti samne aata hai to hum uske bare mein negative hi sochte hain, aise mein hame kya karna chahiye, aisa Rashmi ji poochte hain।
Rashmi Shah ji, ye to bahut avashyak hai ki hame kisi ke liye bhi negative impression man mein nahi rakhna, क्योंकि पहली बात वो हम उसको नुकसान नहीं अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब नेगेटिव इम्प्रेशन मन में होता है तो मेरी फीलिंग्स उस टाइम कैसी होती है, और वो फीलिंग्स मेरी अपनी फीलिंग्स ही मुझे नुकसान पहुंचाती हैं कि मेरा अपना मन जो है वो नेगेटिव या कमजोर होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात कि वो व्यक्ति हमेशा ऐसा रहे ये भी कोई जरूरी नहीं होता, तो मैंने हमेशा उसके लिए ऐसा क्यों मन में रखा हुआ है जो उसको देखते ही मुझे ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाए। और तीसरी बात आप ये सोचिए कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी भी है, तो क्या आपने कभी ये सोचा कि मैंने जो नेगेटिव उसके प्रति इम्प्रेशन रखा है उसमें और भी तो कई बातें होंगी उस व्यक्ति में, क्योंकि मेरा नेगेटिव इम्प्रेशन उसकी कमियों को देखकर ही बना होगा, उसकी कोई ऐसी एक्टिविटीज को देखकर ही बना होगा, तो 24 घंटे तो उसके अंदर वो एक्टिविटीज नहीं चलती है, अच्छी भी चलती ही होंगी, अच्छा मेरे साथ नहीं चलती औरों के साथ तो चलती ही होंगी, तो जरूर उसमें कोई क्वालिटीज भी होंगी। तो मेरा काम है कि उसकी किसी क्वालिटी को मैं देखूं, नहीं भी मैं देख पा रही हूं तो भी मैं उसकी एक्टिविटीज को देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं जरूर कोई क्वालिटी दिखाई अवश्य देगी। तो जब हम उसकी क्वालिटी को देखते हैं और ये खुद को समझाते हैं कि देखो उसके अंदर अगर ये बात ठीक नहीं थी जिस कारण से मुझे देखते ही उसके लिए मन में ऐसी बातें आती हैं, पर वो हमेशा तो ऐसा नहीं है वो व्यक्ति, औरों के साथ तो ऐसा नहीं है वो व्यक्ति, तो मेरा ही जरूर कोई ऐसा उसके साथ कुछ नेगेटिव वो है, तो मेरे साथ ऐसा चल रहा है वो, तो औरों के साथ तो वो अच्छा चल रहा है, तो मैं उसकी क्वालिटी को देखूं, नहीं भी दिख रही तो मैं थोड़ा उस पर विचार करूं, उसकी एक्टिविटीज को और थोड़ा सा बारीकी से देखूं तो मुझे जरूर उसकी क्वालिटी दिखाई देगी। और वैसे तो कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं संसार में जिसमें 100% जिस क्वालिटीज ही हो, चाहे वो कैसा भी हो उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती ही होती है। और सबसे बड़ी बात तो हर एक परमात्मा की संतान है, अगर हम ये भी सोच लें तो हमारा नेगेटिव इम्प्रेशन चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं भी उसी की रचना हूं और वो भी उसी की रचना है, तो रचना तो भिन्न भिन्न ही हो सकती है, सारी एक जैसी जरूरी नहीं हो, कोई हरा पेड़ है तो कोई कम हरा पेड़ है, कोई बड़ा पेड़ है तो कोई छोटा पेड़ है, ऐसे व्यक्ति भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर के है ही हैं, तो मुझे उसकी क्वालिटी देखने से वो नेगेटिव इम्प्रेशन चेंज हो सकता है।
जी, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न सुनंदा जी पूछते हैं, और सुनंदा जी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं, और उनका प्रश्न बच्चों से मिलता जुलता है, बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। वो कहते हैं कि जब भी हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि छोड़ो ना, ये हम अलग जमाने में रहते हैं, वो आपका टाइम अलग था, आप जो बात समझा रहे हैं वो हमारे लिए अप्लाई नहीं करता, और हम अपने आप देख लेंगे जब हमारे फ्यूचर प्रॉब्लम्स आएंगी या हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ऐसा तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या सही में छोड़ देना चाहिए, ऐसा सुनंदा जी पूछती हैं।
नहीं, छोड़ भी नहीं देना चाहिए और बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं होना चाहिए। आजकल हमने देखा है अधिकतर पेरेंट्स बच्चों से बहुत कुछ चाहते होते हैं, ये ऐसे बन जाए, ये ऐसे कर ले, ये वैसे कर ले, ये टॉप पे चले जाए, तो हम खुद ही उसके शिकार बन जाते हैं टेंशन के, या बहुत ज्यादा सोचना, उनके प्रति इच्छा रखना, वो भी नहीं होनी चाहिए। उससे सारे घर का भी वातावरण और बच्चों के ऊपर भी उसका कोई पॉजिटिव असर नहीं होता है। हम चाहते हैं हम पॉजिटिव असर दे रहे हैं, लेकिन वो भी समझ रहे होते हैं कि हम इतना कर नहीं पा रहे या अपनी रीति से अच्छा कर भी रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा उनके इंटरेस्ट पर थोड़ा फ्री भी रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो बात हमें ठीक नहीं लग रही है, मर्यादा युक्त नहीं लग रही है, या आपकी लाइफ में जो बातें आई हैं, आपने बहुत कुछ अनुभव किया है, सीखा है, तब तो पेरेंट्स हैं, और तो वो आप उनको कहिए जरूर, ताकि आपका मन नहीं खाए कि मैं अगर इसको अच्छा बताती तो शायद ये बदल जाता। तो हमारा काम ये है कि हम अच्छी राय दें, अच्छा गाइड करें, जो आपका एक्सपीरियंस है वो उनको शेयर करें, लेकिन उन पे थोपे नहीं। और कल को आपका मन ये नहीं कहेगा, हाँ, अंदर नहीं खाएगा कि मैंने गाइड नहीं किया, तो वो करना भी आवश्यक है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी उनके प्रति बनने से कई बार बच्चे अपने ऊपर ऐसा लगता है कि फोर्सफुली हमारे को प्रेशर में डाला जा रहा है, और उनका ब्रेन हो सकता है कुछ और भी अच्छा सोच पाए, उससे भी थोड़ा सा वो वंचित हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
थैंक यू दीदी, बहुत ही सुंदर सी चीज आपने कही। मैं समझता हूँ बच्चों से रिलेटेड ये चीज तो बहुत सारे लोगों को आजकल समझने की जरूरत है, और जब हम समझते हैं कि एक नया एज है और नए एज ग्रुप में जब लोग आते हैं तो मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से बच्चे भी थोड़ा बहुत जानकारी ज्यादा रखते हैं इंटरनेट से, दूसरे सोर्सेज से, तो उनको लगता है कि उनको ज्यादा पता है, तो ऐसे में पेरेंट होने के नाते गाइडेंस ऑफर करना हमेशा जरूरी है। और बहुत बहुत शुक्रिया उस जवाब के लिए दीदी। एक और प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूं दोस्तों, हमारे पास आखिरी प्रश्न के लिए वक्त है, क्योंकि लगभग हम 50 मिनट्स पे आ चुके हैं। आखिरी प्रश्न अशोक जी से, क्षमा करें, अदिति जी हमसे पूछते हैं, दीदी आई गेट एंग्री सून, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। अदिति जी का प्रश्न है कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाए, वो पूछते हैं।
अदिति जी की ये तो आजकल बड़ी कॉमन समस्या है, और उतनी ही इसको आप सिंपल रीति से हल भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप को ये कहिए, हाँ, रोज थॉट दीजिए कि मेरी नेचर क्या है, मुझे पसंद क्या है। आपको पसंद है क्रोध करना? नहीं है ना पसंद, इसलिए तो आप प्रश्न पूछ रही हैं कि आपको ये अच्छा नहीं लगता है। तो जो चीज अच्छी नहीं लगती है तो हम तो उसको अवॉइड ही करते हैं ना। अगर आपको कोई खाने की चीज ऐसी दे जो आपको अच्छी नहीं लगती है या आपकी तबीयत को नहीं भाती है, तो आप उसको छूती भी नहीं है, पहले ही कह देते नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो जब आपको क्रोध अच्छा लगता ही नहीं है, आप खुद भी पूछ रही है, तो अंदर से भी आप समझ रही है, तो यही संकल्प अपने को कीजिए, ये अच्छा नहीं है, मैं इसे क्यों करूं। तो ये उस समय नहीं जिस समय आपको क्रोध आ जाता है, हाँ, या जल्दी इफेक्ट हो जाता है कोई भी बात को देख करके। जब कोई बात नहीं है, आप बहुत नेचुरल उसमें है, उस समय भी आप अपने आप को ये कहिए कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है। तो जब एक बात को आप अपने आप को पक्का करा लेती है बार बार कह करके कि मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता तो मैं क्यों करूं, तो पहले से हम क्या करते हैं, जब सिचुएशन आती है ना उस टाइम सोचते हैं मुझे क्रोध नहीं आए, ऐसा नहीं होता है किसी भी बात के अंदर, किसी भी सिचुएशन को पहले से हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना होता है। अगर हमें पता चलता है काले बादल आ रहे हैं तो हम पहले से फटाफट बाहर सूख रहे कपड़ों को अंदर करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते नहीं जब बरसेगा तब अंदर करेंगे, नहीं, ऐसे किसी भी बात में आपको पता हो ये खर्चा आ रहा है, हम पहले से उसके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप रोज की दिनचर्या में सुबह उठते ही, हाँ, जब भी आपको याद आए सुबह भी अपने आप को ये थॉट दीजिए कि मेरी जो नेचर है, मुझे जो पसंद है, मेरे को जो अच्छा लगता है वो तो शांति है, वो तो प्यार है। तो अपने आप को कहिए आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल। तो ऐसा थॉट देने से धीरे धीरे आपको उस समय भी, जिस समय सिचुएशन आती है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप कंट्रोल कर लेंगे। वो थॉट जो आपने कई बार लिया है वो उस समय भी तभी आएगा और फिर आपको क्रोध नहीं आएगा। ऐसा हमारे सामने कितने भाई बहन प्रैक्टिकल उन्होंने इस पर इस रीति से ही जीत पाई है और सहज ही वो बिल्कुल क्रोध अब उनके जीवन में रहा ही नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आज आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने उसके लिए फीडबैक्स भी दिए हैं और स्क्रीन पर हम फीडबैक्स पढ़ पा रहे हैं और आपके आंसर से उनको बहुत सारे मोटिवेशन मिला है कि वो बहुत कुछ चेंजेस अपने अंदर ला सकते हैं। अब मैं हमारे सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे आज, और इन प्रश्नों को सुनकर अच्छा लगता है कि आप कितना पॉजिटिवली एफर्ट अपने ऊपर डाल रहे हैं, खुद के अंदर चेंजेस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेचुलेशन आप सभी दोस्तों को, और आप सभी की तरफ से मैं दीदी जी का धन्यवाद करता हूं। पुष्पा दीदी जी आज खास हमारे साथ दिल्ली से जुड़े और हमारे प्रश्नों का समाधान दिया, हमें गाइडेंस और मोटिवेशन प्रोवाइड किया। दीदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीदी, मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर दिन जैसे हम प्रोग्राम में हमारे साथ एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं और उन्होंने अपने लाइफ में इतना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया है, हजारों लोगों को गाइड किया है, तो आपके सानिध्य में ये मेडिटेशन करने का भी एक सुअवसर मिलेगा हमारे सभी दोस्तों को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 4-5 मिनट के लिए आप हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराएं।
ओम शांति। सभी इस समय ये जो घड़ियां हैं, मिनट से अपने थॉट को अपने ही अंदर संकल्प कीजिए, मैं स्वयं भी एक सूक्ष्म एनर्जी हूं, बहुत सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट हूं, शांत हूं, मेरा सोच पॉजिटिव है, अपने थॉट्स की, मन की मैं खुद मालिक हूं। मुझे अपने आप में अपनी ही इस ओरिजिनल नेचर को, जो मेरी ओरिजिनल फीलिंग से मुझे प्रिय है, शांति, प्रेम सुख उस फीलिंग्स में रहना है। क्योंकि मुझ सूक्ष्म एनर्जी की पॉइंट ऑफ लाइट अविनाशी सत्ता की यही क्वालिटी से और इन्हीं फीलिंग्स में मुझे रहना है। वही थॉट्स मेरे चलते रहे, हर समय किसी भी क्रम में परिस्थिति में मैं स्वयं को अपने ओरिजिनल रियल आइडेंटिटी में महसूस करूं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर को चलाने वाली सूक्ष्म सत्ता पीसफुल हूं, लवफुल हूं, और इन कर्म इंद्रियों से देखती हूं, सुनती हूं, बोलती हूं, कोई भी एक्ट करती हूं। मुझे अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स नेचर से ही करनी है, सोचनी है, देखनी है, बोलनी है। यही मेरी रियलिटी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।